हरे कृष्ण। तो आज हम ये दक्ष प्रजापति लीला के बारे में चर्चा आखिरी भाग करेंगे। तो अभी तक हमने चर्चा की किस तरह से जो कुछ लोग धार्मिक कार्य करते हैं पर वो खुद के अहंकार के बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, और ऐसे लोग खुद अहंकारी होते हैं और दूसरों को देखते हैं कि अहंकारी। जो दक्ष यज्ञ कर रहा था पर यज्ञेश्वर की प्रसन्नता यह उसका उद्देश्य नहीं था, उसका उद्देश्य था कि खुद का मान सम्मान दुनिया को दिखाए कि कैसे मैं इतना इतना धार्मिक हूं। और जब उसने देखा कि शिव जी ने उसका आदर नहीं किया तो वो क्रोधित हो गया। तो अभी वो प्रसंग का वर्णन दूसरे अध्याय में हुआ, फिर तीसरा अध्याय आता है, फिर चौथा अध्याय आता है। तो दूसरे अध्याय में क्या होता है कि जब दक्ष शिव जी को शाप देता है तो उसके बाद में शिवजी तो वहां से निकल जाते हैं पर नंदी आदि वो ब्राह्मणों को शाप देते हैं, फिर ब्राह्मण नंदी को शाप देते हैं, तो शापों की श्रृंखला ऐसे होने लगती है, पर शिवजी वहां से विरक्त होकर निकल जाते हैं। उसके बाद में जब पुनः कुछ समय बाद दक्ष यज्ञ करने वाले होते हैं तो तभी सारे ब्रह्मांड से लोग दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जा रहे होते हैं, और तभी दक्ष जानबूझ के शिवजी को आमंत्रित नहीं करते हैं। तभी कई बार ऐसे सोशल ओकेजन होते हैं, ऐसे सामाजिक उत्सव वगैरह होते हैं, तभी वह किसको आमंत्रित करते हैं किसको आमंत्रित नहीं करते हैं इसके द्वारा हम उस व्यक्ति का प्रति हमारे बर्ताव क्या है वही बताते हैं। तो कुछ व्यक्ति को हम आमंत्रित करते हैं और कहते हैं कि आपको सम पीपल कोई स्पेशल गेस्ट के रूप में इनवाइट करते हैं, कुछ लोगों के लिए आमंत्रित करते हैं पर अब नाम के लिए सबको स्पेशल गेस्ट बोलते हैं, पर किस लोगों को स्पेशल आदर दिया जाता है किस लोगों को स्पेशल आदर नहीं दिया जाता है, और फिर किसी कोई उत्सव तो किसको किस प्रकार का कमरा दिया गया है, किसको किस प्रकार का पद दिया गया है, ये सब देखने में कुछ कुछ लोग इसके द्वारा वह क्या ये सब एक शिष्टाचार की बात है, और ये सब अच्छी तरह से देखना ये एक अतिथि का ये एक जो भी हॉस्पिटैलिटी कर रहा है जो भी किसी अतिथि को बुला रहा है वो सब देखना जरूरी है, पर साथ साथ इसके द्वारा लोग कई बार कुछ जिनके प्रति उनको घृणा होती है जिनके प्रति उनके अच्छे भाव नहीं होते हैं उनके प्रति एक नकारात्मक भाव व्यक्त करते हैं। तो वह जब शिवजी को आमंत्रण नहीं देते हैं तो यह उचित नहीं है, क्योंकि यज्ञ जो है वो कर रहे हैं वो यज्ञ कर रहे हैं दक्ष सत्य है, पर यज्ञ में सभी देवताओं का विभाग होता है, और उन्हें दक्ष शाप दिया था कि दक्ष शाप देते शिवजी को तुमको यज्ञ में विभाग नहीं मिलेगा, और उसके अनुसार वो कार्य कर रहे थे। तो शिवजी तो ज्यादा आसक्त नहीं थे, पर सती थी वो कहने लगी कि ये सब उत्सव रहे हमें जाना चाहिए, लेकिन उन्हें आमंत्रण नहीं किया, हमें नहीं जाना चाहिए। आमंत्रण क्या जरूरत है, ये मेरा ही घर है, मेरे माता पिता है, वो मेरे भाई बहन है वहाँ पे, मेरे उन्हें आमंत्रण करने की क्या जरूरत है। नहीं नहीं हमें आमंत्रण नहीं किया, हमें नहीं जाना चाहिए, पर सती जोर देने लग गई। और फिर शिवजी जब ना बोल रहे थे तो सती खुद चली गई वहाँ पे। जब सती वहाँ पे गई उनकी माँ उनके बहनों ने उनका बड़ा स्वागत किया आनंद के साथ, पर दक्ष ने उसकी ओर देखा भी नहीं, मतलब उसे बात भी नहीं की, देखा पर देख के अनदेखा कर दिया। एक चीज है कि कोई इतना बिजी है कि कोई किसी व्यक्ति को देखता ही नहीं है, वो भी एक प्रकार का दुर्लक्ष है, पर कोई देखता है पर ध्यान नहीं देता है। मान लीजिए हम किसी से मिलते हैं और उनको हरे कृष्ण बोलते हैं और वो हमारे देखते हैं और बिना कुछ बोले निकल जाते, तो फिर ये एक प्रकार की अवहेलना हो गई है, ये एक प्रकार का अनादर हो गया है। और खास करके जो दक्ष है वो तो सती के पिता है, और न केवल वो सती का दुर्लक्ष करते हैं, उसके बाद में जब यज्ञ का प्रारंभ होता है तो वो देखते सती देखते कि वहां पे शिव जी के लिए कोई विभाग नहीं रखा है। तो अभी ये विभाग रखना मतलब क्या है वास्तव में, भगवद्गीता के तीसरे अध्याय भगवान बताते हैं, देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यथ। कि वो कहते हैं कि जब हम देवताओं को संतुष्ट करते हैं यज्ञ करके, तो देवताएं हमें फिर हमारी जो जरूरत है पूरी करते हैं। इस तरह से ये पृथ्वी लोक में और ऊपर के लोगों में एक सहयोग का भाव होता है। सातवें स्कंद में हिरण्यकशिपु भी कहते हैं अपने असुरों से कि तुम जाके पृथ्वी पे सारे जो यज्ञ हैं यज्ञ स्थली उध्वस्त कर दो, यज्ञ बंद कर दो। इससे क्या होगा, देवताओं को पुष्टि नहीं मिलेगी, देवताएं कमजोर हो जाएंगे, और कमजोर हो जाएंगे फिर हम उन पर आक्रमण करके उनको हरा देंगे। तो एक तरह से अब ये हिरण्यकशिपु विचारधारा है। हिरण्यकशिपु कोई वैष्णव तत्वज्ञानी नहीं है जो तत्वज्ञान बता रहा है, पर वह कुछ योजना बनाने का प्रयास कर रहा है जिससे कि वो देवताओं को हरा सके। तो वास्तव में क्या होता है कि देवताएं पृथ्वी पर निर्भर हैं अपनी पुष्टि के लिए। ये तो ऐसे हो गया कोई बहुत ही गरीब देश है, सोमालिया नाम अफ्रीका में देश है, ऐसे मान लीजिए कि जो दुनिया का कोई बहुत अमीर देश है अमेरिका, ऐसे अमेरिका सोमालिया पर निर्भर हो, सोमालिया अगर अमेरिका को ट्रिब्यूट नहीं देगा तो अमेरिका भूखा पड़ जाएगा। तो ऐसे नहीं कि देवता है भूखे रह जाएंगे अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे। यहाँ पे भाव क्या है कि हम सबको एक सहयोग में रहना है। जैसे कि नागरिक होते हैं, नागरिकों को सरकार को टैक्स देना होता है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं यज्ञ एक टैक्स के समान है। और टैक्स न देना अभी कई बार जो होता है उसको भागवत में वो शब्द इसमें क्या, बलि मत भरे ते, बलि मतलब जानवर बलि देना नहीं, बलि मतलब कि एक ट्रिब्यूट देना। तो एक शहंशाह राजा है और उसके अधीन अनेक छोटे छोटे दूसरे राजा है, तो सारे जो बाकी राजा है उनको जो बड़ा राजा है उसको ट्रिब्यूट देना होता है, उसको बलि देना होता है, उसको कुछ टैक्स जैसे देना होता है, भेंट देनी होती है। अभी ऐसे नहीं है कि वो बड़ा राजा ये राज्य बाकी राज्य वो भेंट देंगे नहीं, वो टैक्स देंगे नहीं तो भूखा रह जाएगा। पर वह एक लक्षण है कि ये सब राज्य जो है अपनी अधीनता उस राजा के प्रति स्वीकार करते हैं। और कोई राज्य जानबूझ के अगर देता नहीं है तो उसका मतलब क्या है कि वह उस राज्य शहंशाह का अपमान कर रहा है कि मैं तुम्हारा अधिकार स्वीकार नहीं करता। तो उसी तरह से जब सती देखती है कि उस यज्ञ में शिव जी के लिए विभाग नहीं रखा है, तो उससे उस दक्ष क्या दिखा रहे हैं, मैं तुम्हारी कुछ परवाह नहीं करता शिव जी के, तो उससे वो बहुत बहुत दुखी हो जाती है। पहले से दुखी हो गई है कि उनके पिता ने उसको कुछ स्वागत किया ही नहीं, और दूसरा उनके पिता ने शिव जी का भी इस तरह से अवहेलना की है, तो फिर वो इतनी दुखी हो जाती है कि वह अपने शरीर त्यागने को तैयार हो जाती है। और फिर वो अपनी ही दिव्य शक्ति से अपनी शक्ति से अग्नि प्रकट करके खुद का शरीर त्याग देती है। वो कहती है शरीर त्याग क्यों रही हूं मैं, क्योंकि ये शरीर मुझे दक्ष जैसे व्यक्ति से मिला है। दक्ष जैसा व्यक्ति है जो शिव जी की इतनी अवहेलना करता है, तो ऐसे शरीर के साथ मैं पति शिव जी की सेवा नहीं करना चाहती, इसीलिए वो शरीर त्याग देती है। और फिर उसके बाद में इस एक दिव्य लीला है, उसके बाद में उसको नया शरीर मिल जाता है, फिर वो पार्वती बन जाती है और उसको हिमालय में उसका जन्म होता है। तो उसको पर्वत की पुत्री भी कहा जाता है, पार्वती। तो फिर जो होता है उससे तो उसको अगला शरीर मिल जाता है। पर यहाँ पे जो भाव है यहाँ इस तात्पर्य में कि दक्ष इतना निष्ठुर कैसे हो गया, इतना पत्थर जैसे हृदय कैसे हो गया उसका कि उसकी कन्या भी शरीर त्याग रही फिर भी उसने उसको रोका नहीं। तो यह जो भाव है, वास्तव में हम सब जब भी लोगों से मिलते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो हम सब लोगों को अपने अपने मन में एक बॉक्स में डालते हैं, एक कमरे में, एक बॉक्स में, एक कैटेगरी, एक विभाग में डालते हैं। ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये महाराष्ट्रियन है, ये कन्नड़ है, ये अमेरिकन है, ये मेरा गुरु भाई है, ये किसी और गुरु का शिष्य है। इस तरह से हम सबको अलग अलग मेंटल कैटेगरीज, मानसिक विभागों में डालते हैं। और फिर एक तरह से ये अनिवार्य है, क्योंकि हमें जब कार्य करना है, अगर मान लीजिए कोई कन्नड़ है और उनको हिंदी या मराठी आता नहीं है, तो हमको पता होना चाहिए कन्नड़ है ताकि हम उनसे कन्नड़ में बात कर सकें। कोई अंग्रेजी है तो उनसे हम हिंदी में बात करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो एक तरह से ये विभाजन करना मन के स्तर पर आवश्यक है, क्योंकि दुनिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, दुनिया इतनी जटिल है कि हम अगर उसमें कुछ कैटेगरी नहीं डालेंगे तो दुनिया में कार्य कैसे करना है पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरह से कैटेगराइजेशन विभाजन आवश्यक है, पर कभी कभी ये विभाजन जिस उद्देश्य के लिए किया गया है, जैसे भी कि ये कन्नड़ है ताकि मैं इसे समझू, मैं ताकि मैं इनसे कन्नड़ में बात कर सकूं, ये अंग्रेजी है तो इनसे अंग्रेजी में बात कर सकूं, पर इस विभाजन में न केवल ये हम एक कार्यात्मक उद्देश्य के लिए करते हैं, नॉट जस्ट फॉर फंक्शनल पर्पजेस, बट कभी कभी ये हम विभाजन के द्वारा हमारे हमारे कुछ बायसेस, हमारे कुछ अलग अलग प्रकार की भावनाएं आती है कि ये लोग ऐसे ही होते हैं, ये ऐसा ही है, वो वैसे ही है। तो अभी इस प्रकार के इसे हम जो विभाजन करते हैं, तो कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई एक कम्युनिटी, एक प्रकार के समाज, एक जाति या एक विभाग के लोग हैं, उनसे शायद हमको बुरा अनुभव आया है कि ये लोग देवानी करते हैं, और फिर उसके बाद में जो भी उस प्रकार के लोगों से हम मिलते हैं उस जाति के या उस विभाग के उस कम्युनिटी के, तो हम उनसे बड़ा ही सतर्क रहते हैं, उनसे बहुत ही संदेह के साथ उनका संदेह रहता है, हमारा भाव उनसे बड़ा नकारात्मक होता है। भाई वो व्यक्ति भले ईमानदार होगा, मुझसे ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है, तो जब वो बर्ताव ऐसे कर रहा है तो वो इट इज नॉट अबाउट देम, इट इज अबाउट व्हाट वी आर एसोसिएटिंग देम विद। उनके कारण हम उनसे ऐसे बर्ताव नहीं कर रहे हैं, हमारे मन में हम उनको किसी और से जोड़ रहे हैं। तो ऐसे ही अभी दक्ष और सती में हो गया। अभी सती जो वहां पे आई थी, सची सोच रही थी कि मैं इस घर की कन्या हूं, ये दक्ष मेरे पिता है, ये मेरा परिवार है, तो वह खुद को एक कौन से मानसिक विभाग में डाल रही थी कि मैं इस घर की कन्या हूं, पर दक्ष ने उसको दूसरे विभाग में डाल दिया था, पर दक्ष उसको मैं अपनी कन्या के रूप में देख नहीं रहा था, क्या देख रहा था, ये शिवजी की पत्नी है, ये उस व्यक्ति की पत्नी है जिसने मेरा अनादर किया, इसलिए उसका अनादर करके मैं शिवजी के पति बदला लूंगा, शिवजी के पति नाराजगी है वो दिखाऊंगा मैं। तो क्या हो गया, यह हम जब दूसरों से बात कर रहे होते हैं तो हमें इसे किसी को पता नहीं होता है कि लोगों ने हमको किस मेंटल बॉक्स में डाला हुआ है। तो हम साधारणतः एक तरह से बर्ताव करते हैं, पर दूसरे लोग कभी अलग ही बर्ताव करते हैं, क्यों ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, मैं अच्छी तरह से बात करने का प्रयास करूं पर ये अच्छी से बात क्यों नहीं करते मुझसे। तो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि हमने कुछ गलती की हो उसके कारण नाराज हो, पर कभी हमने कुछ गलती की भी नहीं हो तो भी क्या होता है, वो ऐसे बात करते क्योंकि वे हमें किसी उन्होंने बॉक्स में डाल दिया है और उस बॉक्स के प्रति उनका कुछ भाव ऐसे है। तो अभी क्या हो जाता है कि जब ऐसे हो जाता है तो फिर लोग कभी कभी बहुत नकारात्मक हो जाते हैं, बहुत संकीर्णवादी हो जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति एक ब्रिज पुल पे खड़ा होके कूदने वाला था आत्महत्या करने के लिए, तो दूसरा व्यक्ति आया, आत्महत्या मत करो, क्यों मत करो, बोला कि अरे भगवान आपसे प्रेम करते हैं, तुमको कैसे पता, बोले मैं क्रिश्चियन हूं, मैं जानता हूं कि जीसस क्राइस्ट सबसे प्रेम करते हैं। तो वो अभी पूल पे खड़ा था, हाँ मैं भी क्रिश्चियन हूं, हाँ बहुत अच्छा, ठीक है तुम कैथलिक हो या प्रोटेस्टेंट हो, बोले कि नहीं मैं प्रोटेस्टेंट हूं, अरे बहुत अच्छा मैं भी प्रोटेस्टेंट हूं, तो प्रोटेस्टेंट में भी विभाग होते हैं, तुम कौन से प्रोटेस्टेंट हो, बोले मैं बैप्टिस्ट हूं, मैं भी बैप्टिस्ट हूं, बहुत अच्छा, तो फिर तुम कौन से बैप्टिस्ट हो, बोले मैं दक्षिण का बैप्टिस्ट हूं, सदर्न बैप्टिस्ट हूं, बहुत अच्छा मैं भी सदर्न बैप्टिस्ट हूं, तुम कौन से सदर्न बैप्टिस्ट हो, तो कि मैं रिफॉर्म सदर्न बैप्टिस्ट हूं, ए नास्तिक तुम कूदो। क्योंकि ये व्यक्ति ऑर्थोडॉक्स सदर्न बैप्टिस्ट का था। तो क्या होते हैं, छोटे छोटे अभी सब लोग एक ही भगवान को मार रहे हैं, एक ही धर्म में हैं, पर उसके एक विभाग में, एक विभाग में है तो मैं तुमको बचाऊंगा और नहीं तो तुम मरो, मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। तो क्या होता है, हम सब लोगों को अपने अपने विचारों के अनुसार विभाग में डालते हैं मानसिक स्तर पे। और जब इस तरह से हम लोगों को मानसिक विभाग निर्धन करते हैं तो उसके अनुसार हमारा सारा बर्ताव होता है उनके साथ। तो शास्त्र बताते हैं कि प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये तीनों गुण सब लोगों में रहते हैं। अभी कोई व्यक्ति हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या नास्तिक हो, सब में तीन गुण होते हैं। कोई भारतीय हो या अमेरिकी हो या जापानीज हो, मैक्सिकन हो, सब में तीन गुण होते हैं। कोई पुरुष हो, स्त्री हो, सब में तीन गुण होते हैं। तो कोई भी एक बड़ा समूह है उसके सब लोग एक समान नहीं होते। उनमें से कुछ सत्वगुण में होंगे, कुछ रजोगुण में होंगे, कुछ तमोगुण में होंगे। तो हमारा जो अनुभव आता है कुछ लोगों के साथ होता है और कुछ लोगों के अनुभव के आधार पर हम उस समूह के सब लोगों को एक प्रकार बोल देते हैं। तो जो प्रिजुडिस होता है, जो ऐसा नकारात्मक भाव होता है, वो कैसे आता है कि हम छोटा सा अनुभव होता है हमारा, और छोटे से अनुभव से हम जो निष्कर्ष निकालते हैं वो सबके लिए गड़ा लेते हैं। तो उस तरह से क्या हो गया, यह जो दक्ष था वह अपनी पुत्री को अपने पुत्री के रूप में देख ही नहीं रहा था। वह उसको देख रहा था कि ये कौन है, शिव जी की पत्नी है। मैं पिछले एक साल पहले जब अमेरिका गया था तो मैं एक जगह पे 2 महीने के लिए रहा था, लगभग बार बार वहाँ जा रहा था। कई बार मैंने कॉलेज प्रोग्राम्स वहाँ पे किए फ्लोरिडा में। तो फिर वो कई विद्यार्थी मेरे पास में आ गए थे, तो फिर उनसे बातचीत कर रहा था। तो एक विद्यार्थी बता रहा था कि मैं बचपन से फॉस्टर होम में था। फॉस्टर होम मतलब क्या, जो बच्चे अनाथ होते हैं तो कभी कभी वो अनाथालय भी जाते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कोई परिवार उनको अपना लेता है। पर कैसे होता है कि जब कोई अपना लेता है परिवार, तो कभी वो अपना तो लेता है पर अगर वो जमता नहीं है तो फिर उनको बोलता है कि हम उसको स्वीकार नहीं करने देते, फिर उसको किसी और फॉस्टर होम में जाना पड़ता है। तो ऐसे वो, तो मैं उसको पूछा कि आप ऐसे ऐसे फॉस्टर होम में क्यों रह रहे थे, क्या आपके माता पिता किसी एक्सीडेंट में गुजर गए? बोले नहीं, मेरे माता पिता दोनों जीवित है। तो अगर दोनों जीवित है तो फिर आप फॉस्टर होम में क्यों रह रहे थे? उसने कहा कि जब मैं 5 साल का था तब मेरे माता पिता का डिवोर्स हो गया, और बड़ा क्रोध के साथ, बड़े झगड़े के साथ डिवोर्स हो गया। और जब डिवोर्स हो गया तो दोनों माता पिता ने मुझे कहा कि जो मैंने शादी की थी ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, और तुम, उन्होंने बच्चे को बोला, तुम मुझे उस गलती की याद दिला दे। इसीलिए दोनों माता पिता ने कहा कि मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं चाहिए। और माता पिता होते हुए वो बच्चा अनाथ बन गया, और फिर सोशल सिक्योरिटी ने उसको संभाल लिया, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस ने उसको फिर अनाथालय में रखा था, और फिर बाद में अलग अलग जब चला गया। तो वो बता रहा था कि जब अभी वो भक्ति में आने लग गया है थोड़ा बहुत, तो बोलता है कि मैं भगवान को मानता हूं, पर जब भी भगवान की तुलना कोई माता पिता से करता है तो मुझे बिल्कुल जमता नहीं है। तो अभी क्या हो गया, वो बच्चा तो स्वयं एक आत्मा है, एक व्यक्ति है। तो माता और पिता दोनों ने क्या कर दिया, उस बच्चे को वो एक खुद एक व्यक्ति के रूप में नहीं देख रहे, वो बच्चे को उसका मेरा क्या संबंध है उससे नहीं देख रहे, तो ये मेरा संतान है, उसको क्या देख रहे हैं, उस गलती की उत्पत्ति है, उस गलती की याद है। तो उस बच्चे को उन्होंने एक ऐसे मेंटल बॉक्स में डाल दिया कि उससे जो एक माता पिता का स्वाभाविक स्नेह होता अपने संतान के प्रति, वह चला गया। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा मन कई बार हमको संकीर्णवादी बना देता है। यह जो उदाहरण है यह काफी एक्सट्रीम है, ऐसे साधारण नहीं होता ज्यादा, पर यह भी एक तरह से दक्ष के साथ वही हो गया। उसका अपने पुत्र पुत्री के प्रति, जो अपनी कन्या के प्रति जो स्वाभाविक स्नेह था, वो सारा चला गया। ये जब होता है कि हम हमारा मन किस तरह से जो लोगों के बारे में विचार कर रहा है, लोगों को किस तरह से वह किस कैटेगरी में डाल रहा है, किस विभाग में डाल रहा है, यह हमें समझना जरूरी है। न केवल दूसरों को लगता है ये मुझसे ऐसे बर्ताव क्यों करता है, पर न केवल दूसरों को ऐसे लग सकता है ये ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा है, पर कभी कभी हमको भी समझ में आता है। कोई व्यक्ति देखते हैं हमको, देखते ही उसके प्रति गुस्सा आने लगता है, देखते ही उसके प्रति नकारात्मक विचार आने लगते हैं। अभी क्यों आ रहे हैं ये हमको पता नहीं है, ये हमको पता नहीं है। तो हमें थोड़ा उसके लिए खुद का अन्वेषण करना पड़ता है, क्या मेरे जीवन में अनुभव हुए, क्या मेरी विचारधारा है, उसके कारण मैं ऐसा बर्ताव करता हूँ। तो हमारा मन जो है कई बार हमारे संबंधों के बीच में आ जाता है, और संबंधों के बीच में जब आ जाता है तो फिर वो लोगों को वो हम हमारे जो बर्ताव है उसके अनुसार हमें लगता है। तो अनात्म्यम यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जो स्वाभाविक आत्मा से आत्मज है उसके प्रति दक्ष इतने निष्ठुर हो गए। तो यह जो है सब ये मन का खेल है। मन कभी कभी हमें किसी से बड़ा आसक्त बना देता है, और वही मन कभी कभी किसी के प्रति हमारा हमारे लिए बड़ा ही कठोर हृदय वाला बना देता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि अगर आप बहुत आध्यात्मिक बन जाओगे तो आप बहुत विरक्त हो जाओगे, और विरक्त हो जाओगे तो फिर आप किसी की परवाह नहीं करोगे, तभी आप पत्थर दिल वाले हो जाओगे। भी हो सकता है कभी कभी कुछ लोग विरक्ति का भाव ऐसे होता है कि वो विरक्ति के कारण वो अगर विरक्ति क्या है वो अच्छे से समझेंगे नहीं तो फिर वह बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं। तो अभी लापरवाह होना और विरक्त होना ये दोनों अलग चीजें हैं। लापरवाही जो है ये तमोगुण में है, विरक्ति जो है ये सत्वगुण में है। लापरवाही मतलब क्या कि जिसके जिसकी परवाह हमें करनी चाहिए, जिसकी हमने जिम्मेदारी स्वीकार की है वो जिम्मेदारी भी नहीं करना, वो परवाह नहीं करना। विरक्ति मतलब कि जब हम जीवन का कुछ और बड़ा उद्देश्य समझते हैं और किसी और बड़े चीज के प्रति हमारा हमारी आसक्ति हो जाती है, उसके कारण कुछ छोटी चीज के प्रति अनासक्ति हो जाती है। मान लीजिए कोई युवक है, वह राष्ट्र की सेवा के लिए जब घर छोड़ के जाता है, सैनिक बनता है, और तभी उसका माता पिता के प्रति स्नेह होता है स्वाभाविक, पर फिर क्या है राष्ट्र की सेवा के लिए वो अपने माता पिता की सेवा को त्याग छोड़ रहा है। यह एक तरह से उसके लिए विरक्ति लगती है कि मैं मुझे कुछ हो जाए वहां पर, मैं माता पिता का क्या होगा, वह विरक्ति का होना चाहिए। पर वही युवक अगर शराब में लग जाता है और शराब के कारण आलस्य के कारण वो अपने माता पिता की परवाह नहीं करता है, तो ये क्या है, पहले में विरक्ति है, दूसरे में लापरवाही है। तो अभी क्या होता है उसमें, जब वो लापरवाही हो जाती है तो फिर वह शराबी बन गया, तो उसको शराब की ही परवाह होती है, और शराब की इतनी परवाह होती है, शराब में इतना आसक्त हो जाता है कि दूसरों का कुछ विचार ही नहीं करता है। रशिया में, रशिया की शराब होती है उसको वोडका कहते हैं। तो रशिया में जब गरीबी बहुत बढ़ गई थी तो क्या है, गरीबी में लोग क्रांति न करें इसलिए सरकार ने वोडका का प्रचार, वोडका का बहुत सप्लाई दे दिया कि तुम शराब पियो और तुम अपने ही दुनिया में खो जाओ, दुनिया में कुछ परिवर्तन करने का प्रयास मत करो। पर क्या है, वोडका भी क्या ऐसे अनंत मात्रा में नहीं आती है, तो को मांग बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, तो वोडका कॉस्ट बढ़ गया। तो रशिया में परिस्थिति ऐसी थी कि ऐसे एक डॉक्यूमेंट्री में दिखा रहे थे कि अभी समाचार आया कि वोडका का कॉस्ट बढ़ गया है। तो एक छोटा लड़का है घर में, वो अपने पिताजी को पूछ रहा है, पिताजी अभी वोडका की कीमत बढ़ गई है तो क्या आप शराब कम पियोगे? तो वो पिता बोलता है, आदमी बोलता है, नहीं तुम खाना कम खाओगे। तो यहाँ पे क्या हो गया है, जो अभी अगे वापस माता पिता का अपने पुत्र के प्रति, संतान के प्रति स्वाभाविक स्नेह होता है, पर वो ये क्या हो गया, उसका शराब के प्रति इतनी आसक्ति हो गई है कि वो अपने अपने परिवार वालों के खाने में जो पैसा है वो भी लेके शराब पीने को तैयार हो गया। तो क्या होता है, ऐसे नहीं है कि विरक्ति हमें कठोर हृदय वाली बनाती है, वास्तव में आसक्ति हमें कठोर हृदय वाली बनाती है। जब हमारी आसक्ति किसी चीज से होती है तो उस चीज के प्रति हमारी भावनाएं बहुत बढ़ जाती है, पर बाकी सब चीजों के प्रति भावनाएं नहीं रहती है। जो स्वाभाविक भावनाएं रहनी चाहिए वो भी नहीं रहती है। तो ये शराब के प्रति इसकी ये शराबी की भावना इतनी बढ़ जाती है कि एक अपने पुत्र के प्रति जो भावना है वो चली जाती है। वैसे ही दक्ष के मन में अपने अहंकार, अपने आदर, उसके आसक्ति इतनी बढ़ गई कि अपनी पुत्री की स्नेह के प्रति स्वाभाविक स्नेह था वो भी चला गया। तो जो कोई पत्थर दिल वाला होता है वह अधिकांश, अभी विरक्ति कितने लोगों में होती है, बहुत कम लोगों में होती है वास्तव में। तो जो अधिकांश लोग जो अगर पत्थर दिल होना है तो पत्थर दिल हो जाते हैं, वो आसक्ति के कारण होते हैं। वो आसक्त हो जाते हैं किसी एक चीज से, और जब उस एक चीज से आसक्त हो जाते हैं तो बाकी सब चीजों से वो जो स्वाभाविक भावना है वह भी नहीं रहती है। इस तरह से लोग जो है बड़े ही उनकी सारे जो विचारधारा है वो विचलित हो जाती है। पाश्चात्य देशों में ऐसा भाव आ गया है कि सब लोगों को अपना स्वतंत्र चाहिए। स्वतंत्रता तो ये अच्छी बात है, सबको थोड़ा किसी को भी गुलाम नहीं होना चाहिए, पर स्वतंत्रता के भाव में क्या होता है, लोग कुछ भी करते हैं। अभी पाश्चात्य देशों में, अमेरिका में, यूरोप में फेमिनिज्म नाम का विचार, फेमिनिज्म मतलब स्त्रियां चाहती है कि हमको हमारा स्वतंत्र चाहिए। हाँ, कई बार ऐसे होता है कि कुछ परिवार में स्त्रियों को दबाया जाता है, उनके प्रति कुछ अत्याचार होते हैं, वो बहुत गलत है, उसको नहीं होना चाहिए। पर इसका विपरीत क्या होता है कभी कभी, अभी सिया कहती है कि हमको पूरा स्वतंत्र चाहिए। तो इसका एक भाव क्या है, मैं गर्भपात पे किताब लिखने वाला था, तो तभी मैंने जो गर्भपात का के पक्ष में जो लोग होते हैं उनके कुछ विचार पढ़े मैंने, तो वो उनकी विचारधारा इतनी विचलित हो गई है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर पुरुष स्त्री का एक अगर अवैध संघ होता है तो उसके बाद में क्या होती है, स्त्री गर्भवती हो जाती है, पुरुष चला जाता है, तो फिर यह स्त्री के लिए ही खराब है। तो ये पाश्चात्य विचारधारा क्या है कि जो गर्भवती होना ये निसर्ग ने स्त्री के प्रति पक्षपात किया है। ये प्रेगनेंसी इज बायोलॉजिकल स्लेवरी एंड एबॉर्शन इज टेक्नोलॉजिकल लिबरेशन, कि गर्भवती होना ये निसर्ग ने स्त्री पे गुलामी डाली हुई है, और गर्भपात करना यह स्त्री के लिए तंत्र ज्ञान के द्वारा इस गुलामी से आजादी है। इसीलिए वो गर्भपात को स्त्रियों का एक मूलभूत हक के रूप में मानते हैं, इट्स अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ वुमन वो कहते हैं, और उसका बहुत विरोध करते हैं। और यहां तक कि वो ऐसे होता है कि साधारणतः अगर कोई कोई परिवार में कोई बच्चा नहीं हुआ है, कोई बच्चे नहीं है, तो फिर वो प्रभुपाद जी कहते हैं पुत्रहीनम गृह शून्यम, कि अगर कोई स्त्री को बच्चा नहीं हुआ है तो वो एक तरह से दुख की बात होती है। पर पाश्चात्य देश में कोई स्त्री होती है कहते वो खुद को वो कहना नहीं चाहते, आई एम चाइल्डलेस, मैं स्त्रीहीन, मैं पुत्रहीन हूं, कहते आई एम अ चाइल्ड फ्री वुमन, मैं बच्चों से मुक्त स्त्री हूं। अभी क्या है, बच्चों को बंधन मानना, यह कितना विपरीत भाव हो गया है। तो ये एक तरह से दुर्भाग्य है, कैसे होता है कि पाश्चात्य देशों में और अभी भारत के शहरों में आने लग गए हैं, कई लोग विवाह नहीं करते, उसके बिना ही संग कर लेते हैं, उसके बिना ही साथ में रहते हैं, तो फिर बाद में अगर बच्चा हो जाता है तो पिता चले जाते हैं, और फिर जो माता होती है उसको अकेले को बच्चे को संभालना पड़ता है। तो लगभग 1/4 एक चौथाई अमेरिका में जो युवक बच्चे होते हैं वो सब सिंगल पेरेंट फैमिली से होते हैं, उनके परिवार में सिर्फ एक ही पेरेंट, एक ही माता या पिता एक ही होते हैं, और अधिकांश लोग सिंगल पेरेंट मतलब सिंगल मदर फैमिली होते हैं। तो अभी अकेला कोई माता है या अकेले पिता है तो उनको बच्चे को संभालना काफी मुश्किल होता है, तो उसके कारण ऐसे लग सकता है कि बच्चे को संभालना बड़ा मुश्किल है, पर वास्तव में अभी बच्चा होना यह तो एक स्त्री के लिए प्रिविलेज है। यह एक निसर्ग की भेंट है जिससे कि स्त्रियों को एक स्वाभाविक रूप से जो किसी को पालन करने की, किसी को पोषण करने की, उसे बड़ा करने, उसमें एक बड़ा आनंद मिलता है, तो वो नहीं है, वो उन्होंने ठुकरा दिया है। और फिर क्या करते हैं, वो जानवरों को पालते हैं। कई अमेरिका के बड़े शहर है, जैसे मैं पिछले बार भी बताया था कि जो कॉकेशियन लोग हैं, जो अमेरिकन लोग हैं, उसमें उनके परिवारों में बच्चों से ज्यादा कुत्ते होते हैं। तो ये क्या हो गया है, ये सब बच्चों को उन्होंने एक कैटेगरी में डाल दिया। बच्चे एक स्वाभाविक स्वाभाविक स्नेह के पात्र है, बच्चे को दूसरे कैटेगरी में बोझा। तो सारे जो संबंध है वह पूरे उद्ध्वस्त हो गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, यहां तक होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जन्म लेते हैं एक शरीर में, कोई पुरुष है कोई स्त्री है, जन्म से होता है वो। पर कोई पुरुष व्यक्ति होता है, पुरुष स्त्री में कहता है कि वास्तव में मुझे लगता नहीं मैं पुरुष हूं, तो मुझे स्त्री बनना है। तो फिर सर्जरी कर लेते स्त्री बन जाते हैं। कोई स्त्री होती है बोलते कि मैं वास्तव में स्त्री नहीं, मुझे पुरुष बनना है, तो फिर वो सर्जरी कर लेते फिर पुरुष बन जाते हैं। और इसको ऐसे लोग कहते हैं जेंडर बेंडर, वो अपने वो लिंग को बदल देते हैं वो, और फिर लिंग को बदल देते हैं। अभी मेरे वो एक भक्त बता रहे थे, वो उनके दफ्तर में ऑफिस में काम कर रहे थे, और उनका एक कलीग था। तो वो वैसे था कि एक दिन, पिछले दिन ऑफिस में आया तभी वो मिस्टर था, और अगले दिन आया वो मिस बन गया। तो अभी तो फिर अभी उसका परिवार था, उसकी खुद की पत्नी थी, तो अभी वो खुद स्त्री बन गया था। फिर उसकी पत्नी ने उसका परिवार छोड़ गया, उसके दो बच्चे थे वो उसको भी उसे छोड़ दिया। तो क्या है, ये सब लोगों के मन में ऐसी धारणाएं होती है कि वो मन के धारणाओं के अनुसार कार्य करते हैं, और जब मन की धारणाएं एक प्रकार से बढ़ने लगती है तो स्वाभाविक जो भी भावनाएं हैं उसको भूल जाते हैं। अभी किसी का परिवार है, किसी के बच्चे हैं, मतलब वो 30-40 साल तक उस तरह से जीवन जिया है, पर उसके मन में विचार कि नहीं वास्तव में अभी ये कैसे होता है। वास्तव में एक तरह से इसको हम पुनर्जन्म की दृष्टि समझ सकते हैं कि जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, तो शायद पिछले जन्म में कोई स्त्री के शरीर में हो, इस जन्म में पुरुष के शरीर में, कोई पिछले जन्म में पुरुष के शरीर में था, इस जन्म में स्त्री के शरीर में। तो साधारणतः जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में आता है तो पूर्व शरीर की सारी स्मृतियां भूल जाता है वो, और नए शरीर में आता है, और फिर नए शरीर से पहचानने लगता है। पर कभी कभी अगर आत्मा की किसी शरीर से बहुत आसक्ति होती है तो वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, पर उसकी कुछ विचारधारा पिछले शरीर जैसे ही रहती है। तो इसलिए कोई पुरुष के शरीर में अभी है पर उसको ऐसे लगता है कि मैं स्त्री हूं, या कोई स्त्री के शरीर में है पर उसको लगता है कि मैं पुरुष हूं। जैसे कोई मान लीजिए अमेरिका से भारत में आ जाता है तो फिर उसको जेट लैग होता है। जेट लैग मतलब क्या है, शरीर अमेरिका के समय के अनुसार कार्य करता है, कि जब अमेरिका में रात होती है तो सोना होता है, पर भारत में आ गए जब रात हो गई है अमेरिका में, यहाँ पे दिन हो गया होता है, तो फिर शरीर जो है पिछले देश में जैसे थे वैसे कार्य करता है। जैसे जेट लैग होता है, जैसे बॉडी लैग भी हो जाता है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है, पर आत्मा की ज्यादा पिछले शरीर के समय रहती है। तो ये पुनर्जन्म की दृष्टि से हम समझ सकते हैं, पर क्या है कि आत्मा को इस शरीर में रह रहा है तो उसी शरीर के अनुसार कार्य करना है, उसी शरीर के अनुसार कार्य करके फिर आगे बढ़ना है। पर जब आत्मा ऐसे नहीं करता है, जो शरीर है उसको स्वीकार नहीं करता है, जो सब कुछ अपने ही मन के अनुसार मुझे करना है, तो फिर जो स्वाभाविक व्यवहारिक आवश्यक संबंध है, आवश्यक स्ट्रक्चर्स है, आवश्यक रचनाएं हैं, वो सब भी उद्ध्वस्त होने लगती है। तो यहाँ पे अनात्म बताया गया कि इस तरह से दक्ष कार्य कैसे किया, क्योंकि उसके मन की धारणा ऐसी हो गई थी। तो हम सबको हम अन्वेषण करना कि हमारे मन की धारणाएं क्या है, और जो मन की धारणाएं हैं, अगर किसी के प्रति हमको बहुत गुस्सा आ जाता है, किसी के प्रति बहुत स्नेह आ जाता है, तो ये क्यों हो रहा है, हमारे मन में हमने उस चीज को या उस व्यक्ति को किसी एक कैटेगरी में डाल दिया है, ये उचित है या उचित नहीं है हमें देखना है। भगवत में बताया गया राग द्वेष विमुक्त विषयान इंद्रिय आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो राग और द्वेष स्वाभाविक रूप से हम जिस शरीर में है उसके अनुसार आएगा, पर उसको नियंत्रित रखना है, उसके वश में नहीं जाना है। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर न वशमागच्छे तौयस्य परिपंथिनौ। कि राग और द्वेष स्वाभाविक रूप से होगा, इसको हम टाल नहीं सकते। मैं कुछ लोग अपने आप अच्छे लगे, कुछ लोग अच्छे नहीं लगेंगे, पर अगर सेवा करना है तो सबसे अच्छे से भाव रखना है। जो लोग अच्छे लगते हैं उनसे अच्छे स्वाभाविक रूप से स्नेह और बढ़ जाएगा, पर जो लोग अच्छे नहीं लगते उनसे भी हमें अच्छे संबंध जोड़ने चाहिए, कम से कम नकारात्मक भाव तो नहीं रखना चाहिए। इसके लिए हमारे मन को एक बौद्धिक स्तर पर पहले समझना है और फिर आध्यात्मिक स्तर पर भक्ति के द्वारा उसका शुद्धिकरण कराना है। तो इस लीला के द्वारा दिखाया जाता है कि अगर मन का शुद्धिकरण नहीं किया जाए तो व्यक्ति किस तरह से निष्ठुर बन जाता है। अभी कंस जो है वह छोटे बालक को मार डालता है, खुद अपने हाथों से मार डालता है शिशु को, ये तो असुरी भाव है। दक्ष असुर नहीं है, दक्ष देवता है, पर उसके सामने ही उसकी कन्या आत्महत्या कर देती है और वो कुछ भी नहीं करता है। तो एक तरह से ये जो भाव है एक उसका कार्य जो होता है असुरी कार्य से होता है, असुरी नहीं है वो, असुर नहीं है, पर इस तरह से जो मन है विकृत हो जाता है, उसके बाद में व्यक्ति के कार्य भी विकृत हो जाते हैं। तो यह जो लीला है वह एक नकारात्मक भाव से दक्ष दक्ष शिव जी की लीला नकारात्मक भाव से दिखा सकती है कि जब हम खुद का शुद्धिकरण नहीं करते हैं, जब हम भगवान की भक्ति के को उद्देश्य नहीं रखते हैं, तो हमारी आसक्तियां किस तरह से हमें विकृत करा सकती है। जब तक हम भगवान का उद्देश्य बनाते हैं और फिर भगवान की भक्ति में अग्रसर होने का प्रयास करते हैं, तो ऐसी मन की आसक्तियां रहेगी, मन का राग द्वेष रहेगा, पर धीरे धीरे हम उसके परे चले जाएंगे। तो सारांश में आज हमने चर्चा की किस तरह से कि जब हम ये दक्ष की लीला देख रहे हैं तो दक्ष इतना निष्ठुर हो गया कि अपनी उसकी कन्या ने वध कर दिया, पर वह कुछ ने उसे रोका नहीं। क्यों? क्योंकि उसने उसको एक विभाग मान के विभाग में डाल दिया कि ये मेरी पुत्री नहीं है, ये शिव की पत्नी है, और जिसने उसने मेरा अपमान किया है तो मुझे उसका अपमान कर रहे हैं उसकी पत्नी का अपमान करके। तो हम सब एक दुनिया में लोगों से आदान प्रदान करते समय सबको एक मन के विभाग में डालते हैं, मन में विभाजन करते हैं उनका, उनको किसी पक्ष में, किसी संघ में, किसी समूह में डालते हैं, और वह व्यावहारिक स्तर के लिए ज़रूरी है, पर भावनात्मक स्तर पे अगर हम किसी एक पक्ष, किसी एक दो अनुभव के आधार पर किसी पूरे समूह को एक प्रकार से मान लेते हैं तो फिर हमारे सारे उस समूह के लोगों से उस प्रकार की भावनाएँ होने लगती हैं। तो यह अनुचित है, क्योंकि कोई बड़ा समूह अगर होता है तो सत्वगुण रजोगुण तीनों तमोगुण तीन प्रकार के लोग होते हैं, कोई समूह के लोग सब लोग एक समान नहीं होते। तो अगर कोई हमसे अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहा है तो कभी कभी हमारी कुछ गलती होती है जिसके कारण वो ऐसे बर्ताव कर रहे हैं हमसे, पर कभी कभी वो हमारे बारे में हो ही नहीं, वो कभी ऐसे हो जाता है कि वो लोग हमें किसी एक किसी से पहचान रहे हैं उसके कारण ऐसे बर्ताव कर रहे हैं। तो यह जो मन जो कैटेगराइजेशन करता है, मन जो विचारधारा विचार करता है, विश्लेषण करता है, वो किस तरह से करता है, किस तरह से वो मोह में डालता है लोगों को, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। कैसे कि मन जिसके बारे में जो भावना डालता है उसके अनुसार दूसरों के बारे में भावना हो जाती है, तो लोगों को लगता है कभी कभी कि मैं आध्यात्मिक हो जाऊँगा तो विरक्त हो जाऊँगा, उससे कठोर हृदय वाला हो जाऊँगा, हो सकता है वैसे, पर उससे ज़्यादा क्या है कि आसक्ति से व्यक्ति कठोर हृदय वाला हो जाता है। आसक्ति से एक चीज़ के बारे में बहुत बहुत भावनाएं होती है और बाकी चीज़ के बारे में कोई भी भाव नहीं होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति डिवोर्स ले लेता है तो फिर दूसरे व्यक्ति के प्रति इतनी घृणा है कि वो घृणा अपने बच्चों के प्रति भी आ जाती है, या कोई शराबी शराब के प्रति इतनी आसक्ति हो जाती है कि वो अपने परिवार वालों को परिवार वाला नहीं देखता है कि अच्छा ये इनसे पैसा जो मिल सकता है जो कि मैं शराब पे खर्च करूँ। तो उसी तरह से कोई व्यक्ति स्वतंत्रता को सबसे बड़ा चीज मान लेता है, सबको स्वतंत्रता की दृष्टि से देखता है, तो क्या है जो निसर्ग की भेंट है। स्त्री अगर सोच सकती है कि गर्भवती होना ये निसर्ग की भेंट है, पर उसको निसर्ग का बंधन मान सकते हैं। तो जो शरीर हमको मिला है उसको भी हम बोझा मान के शरीर को त्याग के दूसरा लिंग प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये किसी भी एक्सट्रीम तक जा सकता है। तो इसलिए हमारे मन में जो राग और द्वेष है उसको समझकर उसको नियंत्रण करना है हमें। राग और द्वेष तो अनिवार्य है, पर उसके नियंत्रण में जाना अनिवार्य नहीं है। जितना भगवान की भक्ति में एकाग्र होते हैं उससे हमको आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, और फिर राग और द्वेष को हम नियंत्रित रख के जितना भक्ति करते हैं, तो पहले बौद्धिक स्तर पर हम राग द्वेष से दूर रह सकते हैं, और फिर आध्यात्मिक स्तर से शुद्धिकरण करके और राग और द्वेष से मुक्त हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। इसे कोई सवाल है? यस मैम, यू कैन रिपीट, यू कैन स्पीक, आई रिपीट। यह क्वेश्चन आपका सवाल है।
मन जो आपने बताया माइंड मन शत्रु है क्या? मन एक्चुअली हमारा शत्रु है।
ओके,
मित्र है। और उसने जैसे आपने बताया कि पहले पहले वो यू हमको सजेशन देने लगता है, बाद में हमें लगता है कि हम ये वो बोल रहे हैं। तो एक्चुअली हमको कैसे समझना है कि हम ये डिसीजन हमारा है कि मन का है?
ओके, तो मन हमारा शत्रु है, मित्र है। हम फैसला करते हैं तो हमें कैसे समझना है कि ये मेरा फैसला है या मेरे मन का फैसला है? अभी वास्तव में अभी हमारे अंदर मन है, बुद्धि है, अहंकार है, परमात्मा है, ये सब। तो कौन सा कोई विचार आ रहा है, कोई आइडिया आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, वो ढूंढना बड़ा मुश्किल है, वो समझना बड़ा मुश्किल है। तो कहाँ से आ रही है ये चीज़, वो देखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये चीज़ मुझे कहाँ ले जा रही है। ये जो सुझाव आ रहा है, विचार आ रहा है, इच्छा, ये करने से क्या होगा? क्या मैं धर्म की ओर जा रहा हूँ, धर्म से दूर जा रहा हूँ? क्या मैं सही कार्य की ओर जा रहा हूँ, सही कार्य से दूर जा रहा हूँ? तो ये भी कभी कभी असल समझ में नहीं आता है, पर जिस हद तक हमें समझ में आता है कि कुछ कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें पता है कि ये सही है, ये गलत है, और ये विचार आ रहा है, ये गलत विचार है, ये मुझे गलत दिशा में लेके जाएगा, इसीलिए नहीं करूँगा मैं। तो एक तरह से उसके वो किस उसका फल क्या होगा वह देखकर हम फैसला कर सकते हैं। और मन ऐसे नहीं कि हमेशा ही शत्रु है, कि मन जो है वह ऐसे कह सकते विचार किए बिना विचार करता है। मतलब द माइंड इज थॉटलेस। हमें कुछ ऐसे करें, ये देखा खाओ, ये देखा ऐसे करो वैसे करो, हम अभी हम उस पर अच्छी तरह से विचार किए बिना कार्य करने लगते हैं। तो यह एक तरह कई बार बुरा हो सकता है। कोई शराबी बिना विचार के पहले बड़ा फैसला किया, शराब नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, पर शराब दे जाता है, पीने लगता है, तो क्या वो जो विचार आ जाता है मन में और फिर वो कर लेता है। तो व्हेन वी एक्ट अनथिंकिंगली दैट इज एक्शन इंपेल्ड बाय द माइंड। हम विचार के बिना जब कार्य करते हैं वो जो कार्य है मन के कारण होता है। पर मन में जो छवियां होती है वो सब खराब छवियां होती है ऐसे नहीं है। मन में कुछ अच्छी छवि अभी होती है। मान लीजिए हम रास्ते पे जा रहे हैं, कुछ मंदिर दिखता है हमको, तो हम हाथ जोड़ लेते हैं। तो अभी हम विचार नहीं कर रहे मंदिर हाथ जोड़ना, अपने आप को क्या है, एक संस्कार हो गया। तो मन में कुछ वासनाएं हो सकती है जो हमें बुरे कार्य में लगाती है। मन में कुछ संस्कार भी हो सकते हैं जो सकारात्मक होते हैं, जो हमें अच्छे कार्य में लगाते हैं। मन में कुछ वृत्तियां भी होती है जो भी अच्छी हो सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं को वो गणित में बहुत अच्छे होते हैं, को उनको कुछ नंबर होते हैं तुरंत उसको जवाब मिल जाता है। ऐसे नहीं हमको विचार करना पड़ता है दिस इन टू दिस इज दिस, ये कैरी ओवर करो, ये ऐसा आएगा, ये रिजल्ट आएगा, नहीं उनको तुरंत आ जाता है। वो कहाँ से आ गए? वो भी विचार किए बिना आ गए, वो भी मन के कारण आ गए। कोई लोग एक कमरे में आ जाते हैं, जैसे ही कमरे में आते हैं उनको लगता है अरे आप ये कुर्सी इधर कर दो, ये इसका कलर ऐसा बना दो, ये कर्टन ऐसे कर दो, ये रूम बहुत अच्छा लगेगा। और वो बोलते हैं और ऐसे करते तो तुरंत अच्छा हो जाता है। कुछ लोग उस कमरे में 6 महीने के लिए रहे फिर भी उनको सोचते वो आता नहीं आइडिया। तो क्या है कि मन कुछ कुछ चीज़ों में जिन चीज़ों में हम निपुण होते हैं उसमें मतलब क्या है, वो मन में ही वो क्षमता है कि बिना विचार के हमें सही मार्ग बता देता है। ट्रेनिंग भी होती है किसी की, तो ट्रेनिंग भी अगर अच्छी हो जाती है तो मतलब क्या है, उसको विचार किए बिना ही सही कार्य पता जाता है। अभी यहाँ पे अगर अग्नि लग जाएगी तो हम सब डर जाएंगे, पर कोई फायर फाइटर होगा उसको भी मैं थोड़ा सा डर आ जाएगा, पर तुरंत क्या होगा वो ट्रेनिंग के कारण बिना विचार किए भी चलो यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है उसको बुझाओ, ऐसे करो ऐसे करो। तो क्या होता है, ये पूर्व संस्कार से और प्रशिक्षण से दोनों से मन जो होता है उसमें कुछ चीजें अच्छी होती है, मतलब कुछ ऐसे विचार बताता है वो बिना विचार किए सही विचार होता है हमको, और अनेक ऐसे विचार होते हैं उसमें जो बिना विचार के हमको गलत बताते हैं। तो हम सब जो हम कहते हैं बिना विचार के जो सही आता है उसको हम टैलेंट कहते हैं, उसको हम प्रतिभा कहते हैं। तो फिर जो बिना विचार के हमको गलत चीजें आती हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वासनाएं कहते हैं, कुछ विकार कहते हैं, अशुद्धता कहते हैं। तो अभी हमें खुद का आत्मनिरीक्षण करके समझना है ये चीज़ों में अच्छा हूँ मैं, तो ये चीज़ों में अच्छा लगता है मुझे, ये जैसे करना है कि तो फिर उसमें ज़्यादा विचार करने की जरूरत, अगर हम अच्छे हैं हमको पता है तो कर लेते हैं, फिर बाद में हम सोच सकते हैं उसके बारे में। पर हमको हम खुद की कमियाँ भी जानते हैं कि इस चीज़ में मैं गलत मार्ग में गलत कार्य हमेशा करता, तो अगर उसमें विचार आ गए तो उसमें नहीं करना है या उसके बारे में सोचूंगा। तो साधारणतः जब मन जब प्रस्ताव देता है तो अगर हमको पता नहीं अच्छा है बुरा है, अच्छा होगा बुरा होगा, तो उसको बेस्ट है कि हाँ भी नहीं बोलना ना भी नहीं बोलना, वेट बोलना, रुक जाओ। तो रुक जाओ जब हम बोलते हैं उससे क्या होता है, उससे जब मन कोई विचार लेके आता है तो विचार इतनी शक्ति से आता है कि तभी हमारी बुद्धि काम नहीं करती, पर फिर कुछ समय के बाद उसको हम रोकते हैं तो विचार की शक्ति कम हो जाती है और फिर बुद्धि जागृत हो जाती है, फिर बुद्धि के आधार पर विचार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और कभी हम हाँ बोलेंगे कभी ना भी बोलेंगे। तो इसीलिए जिस हद तक हम खुद को ट्रेनिंग देते हैं शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए, शास्त्रों के सिद्धांतों को हमारे जीवन में अनुशील करने के लिए, और खास करके शास्त्र के ज्ञान को हमारे एक तरह से दिमाग में जागरूक रखते हैं, तो उस हद तक जब हमारे मन में कोई प्रस्ताव आएगा विचार आएगा तो उसको हम जांच करके फिर से फैसला कर पाएंगे। कैसे ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं या कोई भाषा में कहते हैं कि लोगों की शब्दकोश होता है, एक एक्टिव शब्दकोश होता है, सक्रिय शब्दकोश होता है, और दूसरा निष्क्रिय शब्दकोश होता है। मतलब ये शब्द मुझे पता है, इसका अर्थ पता है, पर मैं कभी इसको इस्तेमाल नहीं करता, और कुछ शब्द ऐसे जो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो जो निष्क्रिय शब्दकोश में जो शब्द होते हैं उसका उस व्यक्ति कुछ फायदा नहीं होता है, कैसे भी होता है मुझे कुछ बताना होता है पर शब्द इसके लिए समझ में नहीं आता है, और फिर दूसरा बोलता है हाँ मुझे वही कहना था, तो क्या है वो शब्द पता है हमको पर उस समय वो शब्द याद नहीं आता है। तो अगर किसी को और अच्छी तरह से ओजस्वी वक्ता बनना है, अच्छी तरह से वक्ता बनना है, तो क्या है अधिक अधिक शब्द उसको निष्क्रिय शब्दकोश से सक्रिय शब्दकोश होना चाहिए ताकि विचारों को अच्छी तरह से व्यक्त कर सके। तो उसी तरह से कई बार हम जब शास्त्र सुनते हैं, हम कथा सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, मुझे तो ये पता है ये पता है ये पता है, हमको लगता है ये सब तत्वज्ञान पता होता है, पर हमारे तत्वज्ञान हमारे निष्क्रिय शब्दकोश में जैसे होता है, पता है मुझे पर जब जरूरत पड़ती है वो याद नहीं रहता है। तो हमें क्या करना है, इस तत्वज्ञान को हमारे निष्क्रिय ज्ञान से सक्रिय ज्ञान मिलाना है। तो उसके लिए भले ही हम कुछ विचार आ जाता है, हम कुछ कार्य कर देते हैं, उसके बाद में ये गलत कार्य हो गया मुझसे, तो सिर्फ खुद को डांटना नहीं, गलत कार्य क्यों किया, नहीं तो क्या विचार आया मेरे मन में, अच्छा ये विचार आया था, अगर तभी ये मुझे शास्त्र का श्लोक याद आता था, तभी अगर मुझे ये पॉइंट याद आता था तो फिर मैं ऐसे नहीं करता था। तो फिर तभी क्या होता है, मतलब ये तत्वज्ञान है ये इस समय में इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसको मैं अमल कर सकता था। तो इस तरह से जब हम विचार करते हैं, शास्त्रों का ज्ञान यहाँ पे, हमारा जीवन यहाँ पे है, जब हमारा शास्त्र हम खुद विचार करते हैं कि ये शास्त्रों का ज्ञान मेरे जीवन में यहाँ पे मैं अमल कर सकता हूँ, तो फिर अगर मुझे किसी के प्रति क्रोध आता है तो मैं श्लोक तभी मैं याद करता हूँ, त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नाशनवादन काम क्रोध तथा लोभ सस्मादय, क्रोध ये नरक का द्वार है। तो तभी अगर भले भी क्रोध आ गया तभी याद नहीं आया, पर अगले बार जब प्रवचन सुनता हूँ मैं, श्लोक पढ़ता हूँ, श्लोक सुनता हूँ, हाँ हाँ ये श्लोक मुझे याद करना चाहिए, फिर अगले शायद जब क्रोध आने लगता है तो अगर वो श्लोक मुझे याद आ जाता है तो क्या होता है, उस क्रोध का मैं प्रतिकार कर सकता हूँ, नहीं मैं क्रोधी नहीं होऊंगा। तो इस तरह से हमें खुद अन्वेषण करके हमारी जो मन की वृत्तियाँ हैं उनको शास्त्रों के आधार पर उनकी जाँच करनी है, फिर जो वृत्तियां अच्छी है उसको हम स्वीकार कर सकते हैं, जो अच्छी नहीं है उनसे हम दूर रह सकते हैं। ओके बहुत ओके बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंद। ये मेरा आखिरी प्रवचन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये मेरा आखिरी प्रवचन था, अभी मैं आज जा रहा हूँ। तो आपके संग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले काफ़ी समय तक बेलगांव में था, भक्ति सागर महाराज के आश्रय में। अभी कहीं और सेवा आ गई इसलिए यहाँ पर आता नहीं हूँ, पर महाराज का आप सबके प्रति बहुत स्नेह है। सारे दुनिया भर में महाराज की मांग है, दुनिया भर में लोग उनको आमंत्रण देते हैं। जब भी मैं जहाँ पर जाता हूँ वहाँ पर बगे वालों को महाराज कब आने वाले हैं यहाँ पे, आप महाराज को बोले यहाँ पे आने के लिए। तो महाराज बड़े स्नेह से यहाँ पे बहुत समय दे रहे हैं। आप बहुत भाग्यवान हैं कि भक्त सावंत महाराज के स्नेह के आप सब पात्र बने हैं, और आप सबका सेवा करके मैं महाराज की सेवा करने का थोड़ी सुकृति प्राप्त कर सकना चाहता हूँ। तो अगर मैंने जो कुछ भी बोला है उसमें कभी कुछ गलत बोला हो, किसी कुछ भावना को ठेसने में माफ़ कर देना, और आप सबके शुभेच्छाओं के साथ मैं भगवान की सेवा कर सकूँ ये याचना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पत रूपेश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। बेलगाव भक्तवृंद की जय। गौर
श्रीमान चैतन्य चरण प्रभु का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने लगातार छह दिन तक